गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। आपके सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आइए पांचवें श्लोक को पढ़ते हैं, छठा अध्याय। उद्धरीदात्मनात्मानम् उद्धरीदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादये। उद्धरीदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादये। आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः। हरिः ओम्। उद्धरी आत्मन आत्मानम् न आत्मानम् अवसादयेत्। ध्यान दें, इसके पूर्व योगारूढ़ होने की जो बात कही थी, योगारूढ़ता के कल्याण में जो बात कही गई वस्तुतः, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना जो संसार समुद्र है खुद ही पार करें, उसका उद्धार खुद करें, आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए। ये एक प्रश्न भी होता है कि आत्मा को गति भी होती है क्या, फिर क्यों अधोगति बोलते हैं? बोलने के लिए, भाषा के लिए बोलना पड़ता है। वो गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखा, व्हाट बिकम्स द सोल आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है। फिर भी बोल रही है मृत्यु के बाद में आत्मा को कुछ भी नहीं होता है, आत्मा को आना भी नहीं है, आत्मा को जाना भी नहीं है, आत्मा को गति भी नहीं है, तो क्यों अधोगति कहते हैं? वो भाषा के लिए कहते हैं, वैसे नहीं होता है। किंतु आत्मा की ऊर्ध्वगति अधोगति का मतलब है आत्मा का कल्याण अकल्याण, माने अपनी भीतर जो अपना जीवन तत्व है उसके लिए योग्य विचार करना, अयोग्य विचार करना, उसको योग्य जीवन में लेकर के जाना, अयोग्य जीवन में ढकेलना, तो आत्मा को अधोगति ना पहुंचाए। कि जीवात्मा खुद ही अपना मित्र है, आप आपके पहले दोस्त आप हैं और आप आपके शत्रु भी आप ही हैं। अभी आपको निर्णय करना है कि हम अपने दोस्त बने या दुश्मन बने। ध्यान दें, ये जो हमारी जो वैदिक परंपरा है ना, उसमें चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के फिर चार भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब उपनिषद जो है अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। ईश के न कठ मुंडक मांडुक्य तरे अते तरे अश्वेता स्वतर छांदोग्य इत्यादि प्रमुख ईशादि नौ उपनिषद है। इन तमाम उपनिषद में एक शांति मंत्र होता है, जैसे अभी हमने शांति पाठ किया, ओम शनो मित्र शं वरुण शनो भवत्वर्यमा शन इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति। तो ये शांति पाठ है। हाँ, स्वस्ति न इंद्रो रद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्। और हमेशा शांति की कामना, वो पाठ के आरंभ में, पाठ के अंत में शांति की कामना और मंगल की कामना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां तुरणं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये मंगल है, ये विपश्यना के गोयनका जी है, वो की आवाज बहुत अच्छी है, फिर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, तेरा मंगल मेरा मंगल सभी का मंगल हो यरे, सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल हो ये रे। क्यों? योग का अर्थ ही होता है परम मंगल। मंगल नहीं है तो योग नहीं है। परम मंगल का अर्थ इसलिए है कि योग के माध्यम से, योग की दिशा में गति करना। क्या है? योग के ही माध्यम से जीवन के सत्य की ओर, जीवन की आनंद की उपलब्धि है। अब योग को शीर्षासन नहीं समझना चाहिए, योग को आसन प्राणायाम नहीं समझना। योग का है जीवन जीने की कला, जहां आडंबर नहीं है, दंभ नहीं है, छल नहीं है, जहां यम है, नियम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम है। आसन में स्थिर बैठना, प्राणायाम करना, इंद्रियों को निग्रह करके रखना, धारणा है, ध्यान है, समाधि, ये योग है। तो जीवन में है योग के माध्यम से जीवन के सत्य को, जीवन के आनंद को उपलब्ध किया जा सकता है। परम मंगल इस अर्थ में है कि योग की दिशा में गति करना, योग की दिशा में ध्यान देकर, योग की दिशा में गति करना, आप अपने मित्र हो। योग का मतलब क्या होता है? योग मने जोड़ना है। आप अपने आप को जोड़ दो। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। आप अपने आप को अपनी आत्मा में जोड़ दो। अब जिस घड़ी आपने अपने आप को अपनी आत्मा में जोड़ दिया, अब विश्व की आत्मा से जुड़ जाएंगे। ध्रुव जी हैं, वह एक पांव पर खड़े हो गए, उन्होंने अपनी सांस को रोक दिया तो ऐसे रुक गए कि बस पूरी दुनिया की सांस रुक गई। व्यक्ति चेतना को समष्टि चेतना में तद्रूप करने से परम तत्व की साथ में ऐक्य हो जाता है। व्यक्ति के चिन्ह का इंडिविजुअल सेल्फ टू बी मर्ज इन द सुप्रीम सेल्फ। तो ये क्या कहा है कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, उचित है समझदारी, बुद्धिमता तो इसमें है कि व्यक्ति अपनी आत्मा का अधोपतन ना करे, ऊर्ध्वगमन करे। ये दोनों बातें संभव है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप ये पट्टी बांधते हैं कि पट्टी खोलते हैं। हाँ, आप मुक्ति भी कर सकते हो और बंधन भी, क्रिया एक ही है, दिशा भिन्न भिन्न है। तो क्रिया क्या है? ऊर्ध्वगति है क्रिया, है अधोगति भी क्रिया है। तो व्यक्ति की आत्मा तो स्वतंत्र है, नीचे यात्रा करने के लिए भी और ऊपर यात्रा करने के लिए भी, किंतु ध्यान दें, स्वतंत्रता में खतरा है। स्वतंत्रता में क्या खतरा है? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, ये दोनों नजदीक नजदीक में है। स्वतंत्रता माने आप अपने बारे में सोचने के लिए मुक्त हैं। क्या सोचना? कि मैं यहां तिराहे में खड़ा हूं तो जसलोक की ओर जाऊं कि पीछे हमारा ओपेरा हाउस की ओर जाऊं, कि बाएं हाथ को बाबुलनाथ जाऊं। तिराह तो है, सोच आपकी ये कहां जाना है, दिशा आपको तय करना है। आत्मा स्वतंत्र है, हम भी कहते हैं कि कोई स्वतंत्र हो, किंतु दोनों दिशाओं में स्वतंत्रता उपलब्ध है। आपको पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है, प्रकाश में जाना है कि अंधकार में जाना है, ज्ञान में जाना है कि अज्ञान में जाना है, ऊर्ध्व गति करना है कि अधोगति करना है, इट्स ऑल अप टू यू। दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की स्वतंत्रता भी है, दूसरे को डुबा देना उसका बुरा व्यवहार करने की स्वतंत्रता भी है, दूसरे का भला करने की स्वतंत्रता भी है, दूसरे का बुरा करने की भी स्वतंत्रता उसमें है, इट्स ऑल अप टू यू। कहते मनुष्य चाहे तो अंतिम नरक तक दुख की यात्रा कर सकता है, चाहे तो वही मनुष्य अंतिम नरक को छूने में समर्थ हो सकता है, चाहे तो मोक्ष के अंतिम सोपान तक भी यात्रा कर सकता है। वे दोनों दिशाएं खुली हैं, इसलिए मनुष्य अपना मित्र भी हो सकता है और मनुष्य शत्रु भी हो सकता है। तो हम में से बहुत कम लोग हैं, अपने आप को थोड़ा सोचो कि हम में से अपने दोस्त कितने लोग हैं, अपने मित्र अपने बारे में कितना लोग सोचते हैं। दुख यही है कि दूसरे के बारे में सोचना बड़ा सरल है। गुजराती में एक पुरानी एक कविता रही, अधिकांश गुजराती लोग जो जुने पुराने लोग हैं, वो जिनके बाल चिट्टे हो गए सफेद हो गए वो जानते हैं। एक सियार था और ऊंट था, तो ऊंट ने क्या बोला, अरे सियार देखे दुनिया पूरी टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों भाई क्या हो गया, देखो भाई ये भैंस के सिंग टेढ़े हैं, बाघ है उसके नाखून टेढ़े हैं, हाथी की सूंड टेढ़ी है, तोता है उसकी चोंच टेढ़ी है, कुत्ता है उसकी पूंछ टेढ़ी है, अरे बगुला है उसकी गर्दन टेढ़ी है, सारी दुनिया टेढ़ी है। सांभड़ी शियाल बोलियो दाखे दलपत राम, अन्यनु तो एक वाको आपना अडार। वो बाकी लोग तो एक एक जगह टेढ़े हैं मेरे प्यारे, तो खुद अपने को देख तू 18 जगह टेढ़ा है। तो हमको बाहर देखने के लिए सुविधा है, अंदर देखना भी चाहिए ये पता ही नहीं है, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट करते हैं। समझिए मुझे माफ करना, आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मेरी वकील से अपॉइंटमेंट है, मेरे बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट है। अब दुनिया भर की अपॉइंटमेंट कर लेते हो, कभी आपने सोचा कि प्रतिदिन एक ठीक समय में आप अपने साथ अपॉइंटमेंट रखें, अपॉइंटमेंट विद द सेल्फ। अपने लिए क्या है पूछो अपने आप को, अपने लिए कुछ भी नहीं है। लोग बाग कहते हैं स्वामी जी आपको क्या तकलीफ है, आपको तो बना बनाया खाना मिल जाता है, राम जी भाई सवेरे सवेरे आकर के आपके लिए दूध ले आता है, मूंग ले आता है, कभी पोहा ले आता है, कभी उपमा ले आता है, राम जी भाई आपके कमरे में आकर के आपके एक झाड़ू पोछा लगा देता है, आपको क्या तकलीफ क्या है। दोपहर को भी खाना बराबर आपको देते हैं, शाम को देते हैं, कमरे में पानी मिल जाता है, सब आपको सुविधा है, आपको क्या तकलीफ है। हमको पूछो हमको कितना तकलीफ है, हमें सवेरे उठ करके अपनी चाय खुद बनानी पड़ती है, खुद पियो पियो बर्तन भी खुद धोना पड़ता है, अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, अपने बर्तन सफा करना पड़ता है, अरे अपनी रोटियां सेकनी पड़ती हैं, अपने पति को खिलाओ, ससुर को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, फिर दोपहर में कपड़े धो, फिर कपड़ों को सुखाओ, उसको प्रेस करो, सो झंझट है। हम कब अपने साथ अपॉइंटमेंट करें, तो हम प्यार से उनको बोलते हैं यदि आपके घर में 100 मेहमान आ गए, कितना मेहमान बोलो 100, अगर एक और आ गया तो उनको भोजन दे सकते हैं कि नहीं बोलो ना, तो 100 झंझट है तो एक बढ़ाओ। कितना बजे उठते हो भाई, 5:30, 5 बजे उठ जा, 5:30 उठते हो तो 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठते हो तो 5:30 बजे उठ जाओ, सोते हो कितने बजे 9:30 बजे, 9:30 बजे सोते हो तो 10 बजे सो, 10 बजे सोते हो तो 10:30 सो, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा अपने साथ अपॉइंटमेंट। और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, चुप से अपने को देखना। कोशिश तो करके देखो, बहुत जरूरी बात है। एक महात्मा ने अपनी डायरी लिखी, उस महात्मा ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैं बहुत छोटा था, शायद ही 8-9 साल का, तो उस समय मेरे पिता की मृत्यु हो रही थी, तो उन्होंने हम चारों भाइयों को बुला, मुझको पता नहीं उनके कान में क्या कहा, कुछ कुछ कहा, फिर मेरे को भी बुलाया, मुझे कहा तू बहुत छोटा है इसलिए मैं क्या दूं तेरे को, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कुछ देना तो चाहता ही हूं, तो मैं कुछ देना चाहता हूं तो तू उसको संभाल के रखना, वचन दे जो मैं कहूंगा सो करेगा। मैं छोटा बच्चा था, मैं क्या करूं, मैं वो बड़े प्यार से मेरे सिर में हाथ घुमा रहे थे, वात्सल्य से मेरी पीठ में हाथ घुमा रहे थे, लगता था कि अभी प्राण चली जाएगी, किंतु जब रेलवे स्टेशन में ट्रेन है बिल्कुल चुक चुक चलना चालू करती है, तब भी पिता है बच्चे के सिर में हाथ घुमाते रहते हैं, बच्चा पढ़ने जा रहा है, मैंगलोर जा रहा है, तभी उसको हाथ उसको चूम लेते हैं, कुछ कुछ कह देते हैं, जाते जाते ध्यान रखना, पैकेट संभाल के रखना, बैग को ध्यान रखना, ताला डाल के रखना, नीचे सो बात बोलते रहते हैं, तो ये भी मृत्यु अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी, बेटा मुझे वचन दे तो मेरी एक बात को मानेगा। बोले मैं रो पड़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरी उम्र ही 9 साल की थी, मैं क्या समझता, पापा कह दो मैं करूंगा। बोले देख, कभी भी कोई बुरा काम करने के मन में आए ना, जिस काम से तू किसी को भी दुख पहुंचाएगा, तो बेटा 24 घंटे तक टाल देना। मैं बच्चा ही था, मैंने बोला उसके बाद तो कर सकता हूं ना, तो पिताजी ने कहा खुशी से जी भर के कर सकता है, 24 घंटे टाल देना। वो महात्मा ने अपनी डायरी में लिखा है, अरे मेरा पिता मेरे को छल के चला गया, मेरे पिताजी ने मेरे को धोखा दे दिया। क्यों धोखा दे दिया? अरे मैं कभी गलत काम कर ही नहीं सका, एक बार जब गुस्सा आ जाता है उसको मार के रख दो, जीभ लड़खड़ाती है, जीभ पड़पड़ाती है, अभी कुछ बोल दूंगा ऐसी उन्हें लगती है, रुक जाओ, लगाओ ब्रेक, क्यों 24 घंटे के बाद मैं बोलूंगा, फिर नहीं बोल पाओगे, वो घड़ी बीत गई। वो एक अपने आप को सोचो, अपने आप को ठठोलो, किसी के भी हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं DIM, बोलिए DIM, डू इट नाउ, DIM, अच्छा काम, भला काम, परोपकार का काम, जिसे किसको भी सुख होता है, डू इट नाउ। दूसरा शब्द है KIV, के कानपुर, आई इंडिया, वी विक्टरी, KIV, कीप इन व्यू, मैने कीप इन व्यू मैने किसको मारने की इच्छा हो जाए, लड़बड़ा भी ना किस, थोड़ा बड़ी ना किस, ऐसा मन में हो जाए तो सोचेंगे कल करेंगे, आज नहीं, कीप इन व्यू, सोचेंगे देखेंगे करेंगे, कभी नहीं होगा ना। ये वाल्मीकि रामायण में रावण भी यही कहता है, नहीं स्व स्व उपासित को ही पुरुष स्व स्व वेदो, अच्छा काम करने के लिए कल नहीं बोलना, क्योंकि कल किसका आएगा भरोसा नहीं है भाई। जब रावण मृत्युशैया में भगवान रामचंद्र जी महाराज ने कहा लक्ष्मण को जाओ वो बड़ा ज्ञानी है उससे कुछ ज्ञान लेके आओ, काफी कुछ बातें रावण ने कही है, किंतु इस बात में कि अच्छा काम करने के लिए उसी समय करना और गलत काम करने के लिए उसको थोड़ा सोचना, बोले कि मेरे अधोपतन की अवस्था का कारण क्या है कि मैंने गलत काम उसी समय कर दिया और अच्छा काम मैं टालता ही रहा। हम पहले कह चुके हैं रावण के मन में एक इच्छा थी कि मैं क्षार सागर को क्षीर सागर बनाऊं, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, नहीं किया। श्रीलंका से इंद्र के नंदनवन तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाऊं, कल करूंगा, नहीं किया। जिस क्षण उसके मन में भाव आया सीता को उठा के लाऊं, उसी समय उठा के ले आया। गलत काम को उसी समय कर दिया, योग्य को टालता रहा। नहीं स्व स्व उपासित के आई वी कीप इन व्यू डी आई एन डू इट नाउ, ये बहुत जरूरी। हमारे जीवन को अगर हमने सोचना है कि हम ऊर्ध गति कैसे करें, उद्धरे दात्मन आत्मान आत्मान अवसादयेत आत्मैव आत्मन बंधु आत्मैव रिपु, तुम अपने अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हो। हम किसी से कहें कि वह हमारा मित्र है तो किसे हम कहें कि वो हमारा शत्रु है? शत्रु तो हम खुद बनाते हैं, मित्र हम खुद बनाते हैं। स्वयं के लिए दुख के बीज बोने वाला व्यक्ति अपना शत्रु है, और हम सब स्वयं के लिए दुख के ही बीज बोते हैं। दुख का बीज हम खुद अपने आप बो लेते हैं। निश्चित ही बीज बोने में और फसल काटने में बहुत वक्त हो जाता है। अगर बोए बीज बबूल का आम कहते हुए, इट्स ऑल अप टू यू। हाँ, कि वॉट इज इन योर ओन कॉट, यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। अपनी चेतना को अपने आप संभालना है। हम वही पाते हैं जो अपने आप को निर्मित करते हैं। आपको एक अट्टालिका एक भवन बनाना है, भाई कितना भवन बना, 28 मंजिल, तो 28 मंजिल भवन को बनाने के लिए गहराई में कितना जाना पड़ेगा वो तो खुद करना पड़ेगा। हाँ, वाइज मैन बिल्ट ए हाउस अपॉन द रॉक। हमने कहा ना कि भाई मजबूत अगर नींव नहीं होगी तो बीज हमने किसका बोया है? बीज जिसका बोएंगे तो फिर, ये एक हमारे पहचान वाले महात्मा थे तो बार बार कहते थे, महात्मा जी अब हमारे गांव में आओ, हमारे गांव में आओ। तो उन्होंने मेरे को अपना पूरा खेत 250 एकड़ 250 बीघा जमीन दिखाया। बोले कि ये मैं चाहता हूं कि इसके बॉर्डर में सब जगह में ये बेर लगा दिए जाए, बेर तो झाड़ी की झाड़ी हो जाएगी और फिर बेर का बेर भी हो जाएगा। पैसा एक खर्च नहीं होता है क्योंकि उधर सारा पत्थर ही पत्थर है, वहां अच्छी मिट्टी नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, वो मरते दम तक बेर की झाड़ी बेर की झाड़ी बेर की झाड़ी। तो मैंने कहा उनको भेज दो शिवानंद आश्रम में, ये जब तक जमीन अपनी आंख के सामने देखते रहेंगे तो बेर की झाड़ी बेर की झाड़ी बेर की झाड़ी, मरने के बाद उसी में भूत बन करके रहेंगे। बड़ा मुश्किल काम है। अरे अपने जीवन को टटोलो। क्या कहते हैं कि सांस जो आ रही है और जा रही है कोई भरोसा है क्या? हाँ, ये कोई भरोसा नहीं है। अंदर आने वाली सांस बाहर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। हाँ, कह विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, ये निश्वास है कह विश्वास। जब सांस का कोई भरोसा नहीं है फिर क्यों प्रतिपल सोचो ये मेरा अंतिम दिन है, प्रतिपल सोचो ये मेरी अंतिम बात है, प्रतिपल सोचो मैं कल्याण का काम ही कैसे हो सकता हूं, प्रतिपल सोचो कि मैं प्रभु की प्रीति कैसे बढ़ा सकता हूं, प्रतिपल सोचो कि मैं सबके प्रति सद्भाव से कैसे रह सकता हूं। जानते अनजानते किसको मैं कड़वा ना कहूं, किसको मैं बुरा ना कहूं, राजू को राजू नारायण कहता हूं, दिनकर को दिनकर नारायण कहता हूं तो मेरा कोई कुछ लूट जाता है क्या? राम जी महाराज की जय कहे तो मुझे कोई लुट जाता है क्या? मेरे भगवान तुम्हारा नाम भगवान तुम्हें प्रणाम करो सवेरे सवेरे तो उनको देखते हैं। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की कमरे में सबसे पहले सोहनलाल आता था। सोहनलाल कौन है? सफाई वाला, वो शौचालय साफ करने के लिए। तो गुरुदेव कहते हैं व्हाट वॉज माई साधना, मेरी साधना यही रही कि मैं एक फूल सबसे पहले सोहनलाल के चरण में रखता था। हे ईश्वर तुम इस स्वरूप में आ रहे हो तो मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम रखता हूं। अरे बाद में बोले हमारा ब्रह्मचारी आता था, वो आकर के मेरे लिए चाय नाश्ता लिखा था, मैं सब उसके चरण में एक फूल रखता था। हे ईश्वर तुम इस स्वरूप में आ रहे हो, अपने आप को देखो कि मेरे आसपास आने वाले तमाम ईश्वर के स्वरूप है, उनके साथ में मधुर्य भरा व्यवहार करो, करुण्य भरा व्यवहार करो। अरे ये जीव है ना, शिशि आनंद मई मां बोलती थी, बाबा मुखे मिश्री, मुखे मिश्री। मुख में मिश्री का मतलब ये नहीं है कि रोज डली मिश्री रखो डायबिटीज हो जाएगा, किंतु जीव में अमृत रखो। स्पीक स्पीच, गुरु महाराज बोलते थे, स्पीक स्पीच
स्पीक लेस, स्पीक द ट्रूथ। कम बोलो, आवश्यकता पर बोलो, नहीं ये तो नहीं बोलो, मधुर बोलो, असत्य ना बोलो, ना असत्य ना बोलो, कड़वा तो कभी ना बोलो। कुछ कह रहे गलती है तो प्यार से बैठाओ, फिर समझाओ, वो समझेगा, और फिर भी अपनी अकड़ में रहे तो परवाह नहीं, खुद अपने करते चलाओ, आपको देख देख के समझ जाएगा। किंतु हम वही पाते हैं जो कि हमने निर्मित करते हैं। हमें क्या निर्माण करना है, उसको तैयारी कौन करेगा, हमारी यात्रा कहां से होती है, वही पहुंचते हैं जहां हमने जाना है। मैं जानता हूं कि मैं नदी की तरफ जा रहा हूं, रास्ते बहुत सारे हैं, किंतु वस्तुतः मैं नदी की तरफ नहीं जाता हूं। सोचता हूं क्या, करता हूं क्या, सोचा कि मैंने नदी की ओर जाना है, जा रहा है बगीचे की ओर, नहीं। हमारा कोई भी हम सपना देखें, ध्यान दें, अगर हमने नीम की निमोली का बीज अगर बोया है तो वहां पर अब एप्पल नहीं लगेगा, आड़ू नहीं लगेगा, प्लम नहीं लगेगा, केले नहीं लगेंगे, और नीम की निमोली ही लगेगी। ध्यान रहे, कसौटी किसकी है, कसौटी बाहर के लोगों की मत करो, कसौटी अपने आप की करो। बीजों से कोई प्रयोजन नहीं है, मुश्किल क्या है कि हम अपने आप को जज कर लेते हैं। ये जीसस है ना, जीसस तो उनके जीवन की बहुत सुंदर कथा है। जीसस हैं, वो एक दिन जा रहे थे तो एक गांव के पंडितों को पता हो गया कि ये जीसस आ रहे हैं, इसको फंसाओ, कोई आपको कोई अच्छी बात कहने वाला आए तो हमको उसको पसंद नहीं करते हम, क्यों, फिर आएगा खमुखा अपनी फिलोसफी झाड़ेगा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो क्या करना फिर, तो उसको कैसे काटा जाए, कैसे तोड़ा जाए, लोग प्लान करते हैं। तो ईसा मसीह एक गांव में आने वाले थे, तो गांव के पंडित लोग जमा हो गए कि गांव में आने के पहले उसको फंसाओ बाहर। तो उन्होंने कहा कि रुको रुको, देखो हमारे वो एक गांव में एक लड़की थी, उसने व्यभिचार किया था, तो पकड़ के लाया उसको, पूरे गांव को भी ले आए। देखो हमारी ये पुरानी तमाम किताबों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति व्यभिचार करे उसको पत्थर से मार के मार देना चाहिए, तो आपका क्या कहना है। पंडित लोग अपने मूछ ही मूछ में मुस्करा रहे थे कि अगर जीसस कह देगा कि पत्थर मत मारो तो हमारे पुराने ग्रंथ के विपरीत बात हो जाएगी, और अगर जीसस कहते हैं कि पत्थर मारो तो जीसस अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि जीसस ने क्या कहा, यही कहा कोई एक गाल में तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी दिखा दो, हाँ कोई आपके प्रति क्रोध करता है तो उसको प्रेम दो। तो जीसस अपने आप में दोनों तरफ से फंसेगा, बोलो ये लड़की ने व्यभिचार किया है, हमारे ग्रंथों में लिखा है पत्थर से मार के मार दो, आपको क्या कहना है। जीसस ने कहा जब ग्रंथों में लिखा है तो सही है, पत्थर से मार के मारना ही चाहिए। सब पंडित खुश हो गए, बोले नहीं नहीं रुको थोड़ा, मगर कौन मारेगा, सोच लो जिसने कभी व्यभिचार किया नहीं है, जिसने कभी व्यभिचार का विचार भी नहीं किया है वही पत्थर मारेगा। अब आगे वाले लोग हैं, उन्होंने सिर नीचे लटका लिया और धीरे धीरे पीछे सरकने लगे, और पीछे वाले लोग तो भाग ही निकले। थोड़ी देर के बाद में वो महिला रह गई और वो जीसस रह गए। अभी महिला ने जीसस के चरणों में प्रणाम किया, यीशु मैं व्यभिचारिणी हूं, मुझे सजा करो। यीशु ने कहा सजा करने का प्रश्न ही नहीं है, तुमने जब कबूल कर लिया है, तुमने व्यभिचार किया है तो तुम मुक्त हो गई, अब तुम्हें अपने पाप की कबूल कर लिया तो यही सबसे बड़ी तुम्हारी सजा, तो मुक्त पाप से भी मुक्त हो गई और तुम्हें सजा की आवश्यक, जाओ बेटे। और दूसरा, मैं तुमको दंड देने की सोचने वाला कौन, हु एम आई। जीसस ने अपने न्यू टेस्टामेंट में लिखा है डू नॉट जज लेट ये बी जज्ड। हम कौन होते हैं तय करने वाले कि तुम अच्छे हो तुम बुरे हो, तुम योग्य हो तुम अयोग्य हो, हो जाता है समाज में रहते हैं, हमारी सोच कभी कभी कम पड़ जाती है। किंतु बहुत बड़ी हैरानी की बात है, क्या हैरानी की बात है, जीवन की इन पहेलियों में कि हमारे चारों ओर फेंकी गई जो ध्वनियां हैं वो हमारी ही ध्वनियां हैं।
और जोर बात ध्यान करना। हम जो कुछ बोलते हैं वो वातावरण में रहता है और फिर वो टकरा टकरा करके फिर हमारे पास ही वापस आता है। हम सोचते हैं कि ये हमारे विचार कहां से आए, वो आपके ही अपने विचार आपको रिबाउंड होकर के आते हैं। एक बार बुद्ध थे और उनके शिष्य रहे मोगलायन, और मोगलायन भी अपने 15 दूसरे भिक्खुओं के साथ में जा रहे थे। एक बार क्या हुआ कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर है, ध्यान नहीं रहने से मोगलायन के पांव में जोर से टक्कर लगी। टक्कर लगी तो थोड़ा खून भी गया, तो मोगलायन ने आसमान की ओर हाथ उठाए, हाथ जोड़े और धन्यवाद के लिए बहुत कुछ बोलते चले गए। अब 15 शिक्षु भिक्षु है, बड़े हैरान है। क्यों हैरान है? अरे क्या आश्चर्य है, इनके पांव में चोट लग गई है। चाहे तो उनको पत्थर को उठा करके साइड में रख ले, हाँ वो जो चोट लगी है उसमें कुछ धूल डाले न फूल डाले न दवाई डाले न पट्टी बांधे कुछ तो करे। पत्थर लगा हुआ है, खून बह रहा है और आप हाथ जोड़े प्रार्थना करे जा रहे हैं, नमस्कार नमस्कार बोल रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद बोल रहे हैं। ये क्या क्या हो क्या रहा है? भिक्खु ने पूछा उनको, महाराज ये क्या क्या बात है? मोगलायन ने कहा, एक पाप से मेरी मुक्ति हो गई। क्या? कभी इस पत्थर को हमने चोट लगाई होगी, नहीं तो ये पत्थर मुझे क्यों चोट लगा था? कभी इस पत्थर को हमने चोट लगाई होगी, वो एक पाप पेंडिंग था तो आज मेरी मुक्ति हो गई। एक कर्जा था मेरे ऊपर में, आज वो कर्जा निपट गया। बस इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद कह रहा हूं कि मैं कर्जे से मुक्त हो गया, अब मेरी जो स्लेट है साफ हो गई, अब परमात्मा जो चाहे अपना एक नया हिसाब लिख सकता है। हाउ मेनी ऑफ अस वी थिंक लाइक दैट? रास्ते तो चलते हैं, पत्थर भी लगते हैं, संशय, अरे कभी ऐसा मौका पड़ता ही नहीं कि पत्थर की चोट लगी तो लोग बाग पत्थर को भी दो गाली सुना देते हैं। और पत्थर सुनता है नहीं सुनता है परवाह नहीं, कुछ कड़क तो बोल ही देना है उसको। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ कि जीसस के ही पास में एक दिन एक आदमी आया था। तो आदमी आकर बोला कि महाराज मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मेरे बैल चलते ही नहीं है, मेरे बैल चलते नहीं तो मैं बहुत गालियां देता हूं तब जाकर के चलते हैं, मेरे को भी बुरा लगता है। जीसस बोले ना दिया कर, बिल्कुल नहीं देना, डंडा भी नहीं मारना, बोलना भी नहीं, मन में तय कर ले मैं गाली नहीं दूंगा उसको, डंडा नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल प्यार कर वो चलेंगे। तो 3-4 महीना चल गया, बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो बैल चलते भी नहीं और गाली भी देना नहीं डंडा भी नहीं दिखाना, तो मेरा कामधाम कैसे होगा? तो जीसस को क्या मतलब है भाई, वो तो बोल के चला गया, वो तो साधु है, मैं थोड़ा साधु हूं, मैं अगर खेत में हल नहीं चलाऊंगा मेरा गुजारा कैसे होगा? 3-4 महीने के बाद में जीसस वापस आ गए। दे महाराज देखा वो जोर जोर से गाली निकाल रहा है, क्या बात क्या है? आदमी ठीक कहता है। जीसस ने पूछा तू पागल है क्या कर रहा है? आदमी ने बोला कोई बैल मुझे गाली वापस तो नहीं देता है ना, आपको क्या तकलीफ है? अरे कोई गाली वापस दे तो तेरा क्या बिगड़ेगा? आदमी ठीक कहता है, हम अपने गणित को लगा लेते हैं, जो हमसे कमजोर हो ना उन्हीं को डंडा दिखाते रहते हैं, उन्हीं को गालियां देते रहते हैं। बैलों को यदि गालियां तुम दे रहे हो और वो गाली लौटा नहीं सकते तो खतरा कम है, क्योंकि निपटारा अभी हो सकता है। किंतु याद रखना बड़ा सौदा बड़ा महंगा है। क्यों सौदा महंगा है? कहा कि तू गाली देना छोड़। जीसस की आंखों में देखा उसने, क्या बात है, कितना प्यार से कहा। जीसस ने कहा देख तू बैलों को धोखा नहीं दे रहा है, तू मुझको भी नहीं धोखा दे रहा है, तू अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि तूने जो कुछ कहा है वो वातावरण में रहता है। ये आकाशवाणी जो है ना, आकाशवाणी उसमें रेडियो में जो बोला जाता है उसके ऊपर से वाइब्रेशन चलते हैं, फिर उसके वेवलेंथ में हम आगे तो सुन सकते हैं। ये हमारे प्रेमपुरी के ऊपर में कुछ टावर लगे हुए हैं ना, टेलीफोन के टावर 7-8 लगे हैं। प्रेमपुरी का तो मुझे पता नहीं है, हमारे अहमदाबाद में अभी एक भी चिड़िया नहीं है। चकली चकली जिन्हें कहिए ना, देसी चकली स्पैरोस एक भी नहीं। क्यों? ये टेलीफोन के टावरों में सब चिड़ियाएं मर गई। किसको पता है, किसने सोचा है? राजस्थान में जयपुर में एक बार हल्ला हो गया कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं इनके ऊपर ये रेडिएशन ऑफ द टेलीफोन टावर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। कहा बंद करो, ये जो टावर इरेक्ट करते हैं वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा पुराना चला है पंकज अग्रवाल, अभी यहां ही है। उनके माताजी को कैंसर हुआ तो मैं 2-3 दिन पहले देखने भी गया। वो कहते हैं, मैंने कहा क्या हुआ क्या? बोले स्वामी जी क्या करें, हम समझते हैं हमारे लिमिटेशंस, मगर हम टावर बंद कर देंगे तो ठप हो जाएंगे लोग। पूरे राजस्थान में किसी का मोबाइल नहीं चलेगा। आप सोच लो, क्या आप बिना मोबाइल के गुजारा कर सकते हो क्या? पूछो अपने आप को, सोचो। तो एक ओर से जहां हम एक वस्तु विषय की कल्पना करते हैं तो उसके कॉज एंड प्रॉन्स को भी हमको देखना पड़ेगा। जगत में कोई भी घटना निष्परिणामी नहीं होती है, शत्रुता हो कि मित्रता हो। हमको चाहिए कि हम सूक्ष्मतम तरंगों पर ध्यान दें। ये क्यों हम जब हवन क्यों करते हैं, हवन जो करते हैं, होम करते हैं, क्या वजह है? सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव स्वाहा इंद्राय नमः नमः। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो हवन में जो सामग्री डाल जाती है, यज्ञ देव प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वो जो सामग्री डालते हैं उससे जो अग्नि प्रकट होती है, उसे जो धुआं प्रकट होता है, वातावरण में सुगंध होती है। एक राजा के पास में एक तोता रहा, बोलता था शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, मंगलम भवतु, स्वस्तिरस्तु, ऐसे बोलता था सुबह सुबह, शुभम भवतु मंगलम भवतु। राजा बड़ा खुश था। अब जैसे पक्षी है, पैदा हुए तो मरेंगे, तोता भी मर गया। अब राजा को दुख है, मुझे बोलने वाला तोता चाहिए, बोलने वाला, तो किसी ने बोलने वाला तोता ला दिया। अब ये कुछ और बोलता था, पकड़ो साले को, मारो साले को, काट काट काट। राजा बोले ये क्या हो गया भाई? बोले महाराज बोलने वाला तोता है। अरे ये क्या बोल रहा है? बोले जो बोलता तो है, अब क्या बोल रहा है तो क्या पता, सुन लो आपने। कहां से लाए? बोले उसको हमने कसाई के घर से लाए, पहले वाला ऋषि मुनियों के आश्रम से आया। नहीं तो भगवान जो हमारा ये लिफ्ट में आदमी है, वो कल मुझसे कह रहा था, भगवान ने क्या कहा, स्वामी जी मेरे को तो आपके प्रवचन के एक बात बढ़िया समझ में आ गई। हमने कहा क्या समझ में आई? अपनी सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, आप जिस माहौल में रहेंगे उस माहौल के साथ आपके सोच बदलेगी, आपका जीवन है उसमें भी परिवर्तन होगा। ये बहुत जरूरी बात है। जिस वातावरण में रहते हो, अभी हम सत्संग सुनने से क्या, बार 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 प्रेमपुरी में आकर के वेदांत सुनने वाले लोग, सत्संग सुनने वाले लोग, मिथ्या नहीं जाएगा, ये कभी मिथ्या नहीं जाएगा, क्योंकि जीवन में सतत सातत्य ये सत्संग के कारण विवेक होगा। कुछ भी हो, सुख दुख के बीच में भी महसूस होगा, मैं ये देह नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं। तो ये बार बार जो हमारी समझ में आएगी बात, कि पंचीकरण कहते हैं वेदांत में उसको, पंचीकरण क्या कहते हैं, कि मैं कर्मेंद्रिय नहीं हूं 5, मैं ज्ञानेंद्र नहीं हूं 5, मैं पंच प्राण नहीं हूं, मैं तो पंच महाभूत नहीं हूं, मैं पंच तन्मात्रा नहीं हूं, मैं कौन हूं, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी, यही मैं हूं। सतत इसका चिंतन करते करते कभी प्राण जाने लगेंगे तो फिर प्राण अटकेंगे नहीं। क्यों? जानते हैं कि ये पिंजरा है, पुराना हो गया, अब दूसरे पिंजरे में जाना है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नमानि गृह्णाति नरो पराणी, ये फट गया है कोट तो उसको छोड़ना है, नया पहनना है। तो पुराना कपड़ा फट गया तो उसको छोड़ने में तकलीफ नहीं होती है, फिर देह में आसक्ति नहीं रहेगी। तो आपके दोस्त आप बनेंगे। दोस्त कैसे बनेंगे? सतत स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचन से आपको कभी भी प्रमाद नहीं होगा। तो सद्भावना, एक बात समझ लो आप, देखिए अंग्रेजी वाले लोग जब मिलते हैं ना एक दूसरे को तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अरे इसका मतलब क्या होता है गुड मॉर्निंग? मैंने हाँ ये सुबह अच्छी है, तो तू कहे तब भी अच्छी है, नहीं कहे तब भी अच्छी है। हाँ व्हाट इज गुड इन द मॉर्निंग, एक दिन बोल के रहना। कोई बोलेगा हाय गुड मॉर्निंग, व्हाट इज गुड इन द मॉर्निंग, उसका मुंह फूल जाएगा, ये क्या है मेरे को गुड मॉर्निंग बोल। तो गुड मॉर्निंग तो बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो तो पता नहीं है, लल्लू हो। हमारी भारतीय परंपरा एक अलग थी। कोई जानने वाला भी हो कोई नहीं जानने वाला भी हो, सवेरे 4:30 बजे चौपाटी में घूम के आना एक दिन। कितने लोग रहते हैं, साहेब जी, राम राम जी, जयराम जी की, जय श्री कृष्ण, नहीं जानने वाले जानने वाले तमाम लोग एक दूसरे को बोलते रहते। अरे यू आर स्टार्टिंग ए डे विद गॉड, हाँ अरे तुम प्रभु के नाम से एक दूसरे को आप प्यार मोहब्बत की श्रृंखला से जोड़ रहे हो, जय राम जी की। और अभी कभी इस मान लो कि आपने कहीं धंधा पेशा है मैंगलोर बेंगलोर में कर लिया और फिर बहुत दिन के बाद में अपने गांव में चले आए, गांव वाले सब बोलेंगे ए जय श्री कृष्ण, क्या रे भाई जयराम जी की, बहुत दिन के बाद में दर्शन हुआ, कैसा कहा रे, राम राम रे। हर गांव का आदमी आपको जय श्री कृष्ण बोलेगा, जयराम जी की बोलेगा, राम राम बोलेगा। ये हमारी परंपरा है, तुम चाहो कि ना चाहो राम है वो हम दोनों को जोड़ता है, आत्मा में आत्मा को मिलाता है। तो आप अपने मित्र नहीं, आप स्वात्मानंद की एक महान स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। हाँ रास्ते में कोई मिल जाए उसको जय श्री कृष्ण करो, वैसे मुंह टेढ़ा करके जाएगा, जाए तो जाए, कम से कम करो तो सही। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज क्या बोलते हैं, बोलो, आज थी जे लोगो न बोलता होए तेने बोलाओ, जो जो नहीं बोलता उससे बोलो, उसका दरवाजा खटखटाओ। हाँ जय श्री कृष्ण, जोर से बंद कर देगा वो, करे तो करे, तो फोन करो हेलो जय श्री कृष्ण, फिर से रख देगा, परवाह नहीं, एक पोस्ट कार्ड में लिख दो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय, तकलीफ क्या है, लिखो बोलो उसके पीछे पड़ जाओ। एक ऋषि थे बड़े गुस्सा में आ गए, इतने गुस्सा में आ गए तो राजा ने सोचा मैं क्या करूं, तो उसने क्या किया, ऋषि के स्वागत के लिए अपने राजधानी से 10 किलोमीटर दूर के पहले उन्होंने आर्च लगा दिए वेलकम ऋषि के लिए, पर सेनाएं लगा दी, पुष्प वृष्टि कर दी, उनके पांव धोए गए, उनके आरती उतारी गई। बाय द टाइम वो राजा के महल में आया तब तक गुस्सा ठंडा हो गया। राम राम बोलने में तकलीफ क्या होती है, दादी चो हरे राम, दादी को हरे राम बोलने में मेरा कुछ जाता है क्या, आई डोंट लूज इट, दादी को मैंने बोलू हरे राम तो क्या खुशी होती कि नहीं, दादी ठीक है, अरे कितना खुश, देखो मुंह रसगुल्ला के माफिक हो गया। यू डोंट लूज एनीथिंग, हाँ मगर ये क्या मतलब है, हरे राम बोलने में क्या होता है, दादी ठीक हो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, प्यार से मिलो, प्यार से मिलो, फिर से प्यार से मिलो। तुम दुनिया में देखो भाई सुनो, शत्रु बनाना एक क्षण में हो जाएगा, किसको शत्रु बनाना है इस क्षण का खेल है, बच्चों का खेल है, किंतु मित्र बनाना और मित्रता निभाना ये एक जीवन की साधना है। मित्र बनाना और मित्रता निभाना ये एक जीवन का खेल है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो हमारा मित्र, जीवन संबंध है, जीवन क्या है, रिलेशनशिप है, हम संबंधों में जीते हैं, हमने अपने संबंधों में जीते हैं। बहुत जरूरी बात, देखिए एक बात ध्यान दें कि आप यहां मधुबाबू रहते हैं, यहां पर महालक्ष्मी के पास में मधुबाबू रहते हैं महालक्ष्मी के पास में, और वो कोई जैसे से चलने वाला कभी कोई कह दे मधुबाबू जयराम जी की, तो मधुबाबू घर में सुनते हैं, उनके धर्मपति के ओ जी सुनते हो क्या है, वो आपको बुला रहे, मुझको नहीं बुला रहे, मैं जानता नहीं इस आवाज को, रोज निकले, सब लोग बोलो रोज निकले, एक ही समय एक ही ढंग से मधुबाबू जय श्री कृष्ण, एक समय में रोज 365 दिन कभी मधुबाबू खड़े नहीं हो गए, अपने घर से हिले भी नहीं, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, दस साल, उस बंदे ने आना ही आना है, बोलना ही बोलना है। अब मधुबाबू सुनते भी नहीं है, कभी कभी सुन भी लेते हैं, अब पत्नी भी नहीं कहती है, किंतु एक 10-12 साल के बाद में एक दिन आधी रात में 1 बजे मधुबाबू,
वो आवाज जानते कि नहीं जानते,
बोलो।
उसने 10 साल में कभी दरवाजा नहीं खटखटाया, आज पहली बार खटखटा रहा है, तो उस आवाज को आप पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? पहचानते हो। दरवाजा खोलोगे कि नहीं खोलोगे? खोल के क्या बोलोगे? भाई साहब क्या हो गया, क्या तकलीफ, क्या है?
बहुत तकलीफ है, बहुत।
अच्छा टुको, वो जी सुनती हो, मेरा पर्स देना, बेटे को बुलाएंगे, कार निकाल, तू भी चल। कहां चलो, कहां चलना है?
10-20 हजार रुपया साथ में लेंगे। उस बंदा का नाम भी पता नहीं आपको, किंतु उसकी आवाज तो जानते हो ना, उसको बोलते हैं संबंध योग। ये इतनी सारी लाइटें यहां लगी हुई हैं, इनका सबका कनेक्शन है, किंतु ये कनेक्शन पावर हाउस से ना हो, कितना स्विच अप डाउन करो तो बिजली नहीं जलेगी। नल की चिड़िया खोलो बंद करो, म्यूनिसिपालिटी से कनेक्शन नहीं है तो वो पानी नहीं आएगा। आवश्यकता क्या है? संबंध योग। अरे हठ योग है, लय योग है, नाद योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, संबंध योग। एक पेड़ लगाया तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो तो क्या हो जाएगा, हरा भरा रहेगा। रोज ना सही, हफ्ते में 1 बार, रोज ना सही, हफ्ते में 2 बार मिलते रहो, जयराम जी की बोलते रहो, जय श्री कृष्ण बोलते रहो, राम राम करते रहो, ये संबंध योग है। मंगल का फैलाव करता है। ये नए साल में हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं, ईद मुबारक कर लेते हैं, जैन लोग भी लिख देते हैं मिच्छामि दुक्कड़म। वो क्या है? रिन्यूइंग द फ्रेंडशिप, हमारे संबंधों को ताजा रखना है। ये जो दिया नीचे आता है उसको थोड़ा ऊपर करना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है, ऊपर जल गया तो थोड़ा काट देते हैं ताकि वो ठीक से जले। वो संबंध रखना पड़ता है, संबंध। लोग बात क्या करते हैं, सर्दियों के दिन में कोई फेस्टिवल करते हैं ना, इतने सारे घी में बत्तियां लगा देते हैं। अब वो बत्ती जल तो जाती है, अपनी जगह में बैठो तब तक वो बुझ जाती है। क्यों? वो घी ऊपर चढ़ता ही नहीं, उसका संबंध नहीं है। बत्ती है, घी भी है, दिया भी जलाया किंतु बुझ गया। क्यों? नीचे का घी ऊपर जाए, नीचे का घी जम गया है क्या? अहंकार में जमा पड़ा है, अहंकार में जमे पड़े हैं। उसके साथ में दोस्ती, उसको थोड़ा नरम करना पड़ेगा। नरम कैसे कर सकते हैं? रोज रोज जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो क्या कहा कि अपना मित्र कौन हो जाएगा? अपना मित्र वही है जो चारों ओर मंगल की कामना करता है, जो चारों ओर फैलाव शुभ की करता है, चारों ओर नमन करता है। एक बच्चे के जन्म के साथ ज्योतिषी ने बोल दिया, ये 8 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। वो तो मां ने बोला कोई चिंता नहीं, 8 साल तो जिएगा, ठीक है। वो बच्चा समझदार हुआ तो मां ने ये सिखाया, हाथ जोड़, सबके चरण में सिर रख, बोलो जय श्री कृष्ण बोल। तो वो बच्चे को सिखा दिया, सबको पांव में झुकेगा, पांव छुएगा, जय श्री कृष्ण। सब लोग बोले जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, मेरा प्यारा बेटा जीते रहो। वो जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, इतने हजार लोगों ने बोल दिया। 8 साल का होते होते मौत की हिम्मत नहीं थी आऊं, क्योंकि उस मौत के इस बच्चे के आगे हजारों लोगों के आशीर्वाद, क्योंकि एक लाइन बन गई थी, जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमन तो करके देखो, प्रणाम तो करके देखो, सहज तो बन के देखो, सरल तो बन के देखो, अपने सिर को नीचे रख के तो देखो। तुम कुछ गंवाते नहीं हो, पाते ही पाते चले जाते हो। मित्र आप अपने बन जाओगे, दुश्मन भी आप अपने बन सकते हो, किंतु दुश्मन बनने के लिए तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। दुश्मन बनने के लिए कोई बड़ी लंबी तैयारियां नहीं करनी पड़ेगी। दुश्मन तो क्षण भर में बन सकता है। एक गाली क्यों नहीं दी थी, एक पत्थर क्यों नहीं मार दिया? नहीं, किंतु एक संघर्ष, एक साधना है मित्र बनने के लिए, तो वो उसका मुश्किल बात नहीं है। एक ऐसी बात है कि जिंदगी भर पुनरुक्ति से ज्यादा मालूम नहीं पड़ता। जैसे कि हम जीते हैं, मैकेनिकल रिपीटेशन हो तब भी क्या हुआ, कहीं भूल भी हो सकती है, कहीं चूक भी हो सकती है, पुरानी गलतियां फिर भी हो सकती है। कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, क्राइस्ट है, उन तमाम लोगों ने हमारे लिए आनंद का रास्ता बना के दिया है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऊपर से हमें लगता है कि ये लोग बिल्कुल त्यागी हैं। नहीं नहीं नहीं, बड़े स्वार्थी हैं ये लोग, ये त्यागी नहीं है। वो इतने बड़े स्वार्थी थे, त्यागी कहे जा सकते थे, किंतु ज्यादा मूड हम नहीं है। क्यों? हमने जो त्याग कर दिया अपने आप को करुणा के साथ में, उन्होंने क्या करुणा की है, उन्होंने क्षमा किया है। ध्यान रखना, शत्रु होना आसान है, शत्रु होने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ मत करो शत्रु, किसी ने नमस्ते कहा इधर मत देखो उधर देख लो, आप उसके शत्रु हो जाओगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मित्र होने के लिए झुकना पड़ता है, कोई चिंता नहीं, झुक जाना। अगर आपको किसका शत्रु होना है तो एक सेकंड में हो सकते हो, किंतु मित्र होने के लिए एक जीवन काफी नहीं है। मित्रता बड़ी साधना है, शत्रुता बच्चों का खेल है, इसलिए हम शत्रुता को आसानी में उतर जाते हैं। खुद के साथ मित्रता करना भी बड़ी कठिन है, दूसरों के साथ तो कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है खुद के साथ करें। तो हमको क्या करना है, ना समझी के जीवन से बाहर आना है। बहुत जरूरी बात, हम अपने आप से घृणा ना करें, हम अपने आप को प्रेम करें। तो कैसे प्रेम कर सकते हैं, थोड़ा शुभ चिंतन करना सीखें। शुभ चिंतन माने सभी का मंगल होय रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सभी का मंगल होय रे। जब हम कहते हैं सबका हो कल्याण, सब रहें सुखी, कोई न हो दुखी, सबका हो मंगल, पूरब में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में पहाड़ों में समुन्दर में वन में जंगल में जन जन के जीवन में शुभ हो मंगल हो, शुभ हो मंगल हो। तो जब हम कहते हैं सभी का हो कल्याण, तो सभी के बीच में आप तो हैं, पूर्व में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में भी आप तो हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा मंगल 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 की कामना करो, आपका मंगल हो जाएगा। हमेशा सबके कल्याण की कामना करो, आपका कल्याण हो जाएगा। किसी के प्रति बुरा किसी का हो ऐसा सपने में भी नहीं सोचो, आपका कोई बुरा नहीं होगा। आप अपने मित्र बन सकते हैं, आप अपने शत्रु भी बन सकते हैं। निर्णय आपको करना है, चाबी को घुमाना है ऐसे कि जहां आनंद का ज्योति का ज्ञान का प्रकाश का दरवाजा खुले, या चाबी को वैसे घुमाना है कि जहां आनंद है ज्योति है ज्ञान है प्रकाश है विकास का दरवाजा बंद हो जाए, ऐसी चाबी घुमाए कि ऐसा द्वार खुल जाए कि जहां एक शाश्वत आनंद हो, एक जीवन की मैत्री का आनंद हो। वो एक अच्छे कवि ने बड़े प्यार से लिखा है, मार्ग भूलेला जीवन पथिकने, मार्ग चिंधवा उभो रहूं, करे उपेक्षा जो ए मार्ग नी, तोपन समता चित्त धरूं। वो गलत रास्ते जा रहा है, खड़े रहो भैया ये रास्ता ठीक नहीं। ए तेरे को क्या भय, ठीक है आपको पसंद नहीं आया, फिर भी मेरा कहने का धर्म है आपके लिए यही रास्ता है। मैं अपने आप में विचलित न हूं, सत्य में प्रतिष्ठित हूं, सभी की करुणा की कामना करता रहूं, सभी के मंगल की कामना करता रहूं। और ध्यान दो, जीवन मंगलमय है, असंभव नहीं है, प्रयत्न करें इस मंगलता को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।